मत हिज रिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की उपस्थित भक्त वृंद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत् नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तेर्भवति नैष्ठिके कृष्णाय वासुदेवाय देवके नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज हम पढ़ रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम से नवम स्कंध अध्याय 22। अध्याय का शीर्षक है आजमीर के वंशज। और आज के श्लोक संख्या है 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 32। तो हम 32 संख्या का जो श्लोक है उसको दोहराएंगे और उसके पहले वाले जो श्लोक है उसको मैं अभी पठन करूंगा। 26 गांधार्याम धृतराष्ट्रस्य केवल मैं अकेला पठन करने वाला हूं। जज्ञे पुत्र शतम नृप तत्र दुर्योधनो ज्येष्ठो दुश्शला चापि कन्यका। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं परीक्षित महाराज को, हे राजन, धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी ने 100 पुत्र तथा एक कन्या को जन्म दिया। सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन था और कन्या का नाम दुश्शला था। शापान मैथुन रुद्धस्य पांडो कुंत्या महारथा जाता धर्मा नीलेन्द्रेभ्यो युधिष्ठिर मुखास्त्रयः नकुलः सहदेवाश्च माद्र्यां नासत्यदस्त्रयो द्रौपद्यां पंच पंचभ्या पुत्रास्ते पितरो भवन। एक मुनि के द्वारा शापित होने से पांडु का विषयी जीवन बाधित हो गया, अतएव उसकी पत्नी कुंती के गर्भ से 3 पुत्र युधिष्ठिर भीम तथा अर्जुन उत्पन्न हुए, जो क्रमशः धर्मराज वायुदेव तथा इंद्रदेव के पुत्र थे। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री ने नकुल तथा सहदेव को जन्म दिया, जो दोनों अश्विनी कुमारों द्वारा उत्पन्न थे। युधिष्ठिर इत्यादि 5 भाइयों ने द्रौपदी के गर्भ से 5 पुत्र उत्पन्न किए। ये 5 पुत्र तुम्हारे चाचा थे। युधिष्ठिरात प्रतिविंध्य श्रुत सेनो वृकोदरात अर्जुना श्रुत कीर्तिस्तो शतानेकस्तु नाकुलिः। युधिष्ठिर से प्रतिविंध्य, भीम से श्रुतसेन अर्जुन से श्रुतकीर्ति तथा नकुल से शतानिक नामक पुत्र हुए। सहदेव सुतो राजन श्रुत कर्मा तथा परे युधिष्ठिरात्तु पौरव्याम देवकोथ घटोत्कचः भीमसेनाधिडिम्बायां काल्यां सर्वगतस्ततः सहदेवात् सुहोत्रं तु विजया सुत पार्वती। हे राजा, सहदेव का पुत्र श्रुतकर्मा था। यही नहीं, युधिष्ठिर तथा उनके भाइयों की अन्य पत्नियों से और भी पुत्र उत्पन्न हुए। युधिष्ठिर ने पौरवी के गर्भ से देवक को और भीमसेन ने अपनी पत्नी हिडिम्बा के गर्भ से घटोत्कच तथा अपनी अन्य पत्नी काली के गर्भ से सर्वगत नामक पुत्रों को जन्म दिया। इसी प्रकार सहदेव को उसकी पत्नी विजया से सुहोत्र नामक पुत्र प्राप्त हुआ। विजया पर्वतों के राजा की पुत्री थी। श्लोक संख्या 32, अब ये दोहराइए। करेन्नु मत्याम नकुलो नरमित्रम तथा अर्जुन ईरावंतम उलुप्याम वै सुतायाम बब्रुवाहनः सुतायां बभ्रुवाहनम् मणिपुरपतेः सोऽपि तत्पुत्रः पुत्रिका सुतः करेन्मुत्यां नकुलो नरमित्रं तथा अर्जुनः ईरावंत्यं उलुप्यां वै सुतायां बभ्रुवाहनम् मणिपुरपते सोऽपि तत्पुत्रः पुत्रिका सुतः करेनुमत्यां नकुलो नरमित्रं तथा अर्जुनः ईरावंत्यं उलुप्यां वै सुतायां बभ्रुवाहनम् मणिपुरपतेः सोऽपि तत्पुत्रः पुत्रिका सुतः। दोहराइए। माताजी, शब्दार्थ करेनुमत्याम करेनुमति नामक पत्नी से नकुलः नकुल ने नरमित्रम नरमित्र को तथा भी अर्जुनः अर्जुन ने इरावंतम इरावान को उलुप्याम नागकन्या उलुपी के गर्भ से वही निसंदेह सुतायाम पुत्री से बभ्रुवाहनम बभ्रुवाहन मणिपुरपते मणिपुर के राजा की सह वह अपि यद्यपि तत्पुत्रः अर्जुन का पुत्र पुत्रिका सुतः अपने नाना का पुत्र। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। नकुल की पत्नी करेनुमति से नरमित्र नामक पुत्र हुआ। इसी प्रकार अर्जुन को नाग कन्या उलूपी नामक अपनी पत्नी से ईरावान नामक पुत्र तथा मणिपुर की राजकुमारी के गर्भ से बभ्रुवाहन नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। बभ्रुवाहन मणिपुर के राजा का दत्तक पुत्र बन गया। तात्पर्य यह समझ लेना चाहिए कि पार्वती मणिपुर नामक अत्यंत प्राचीन पहाड़ी देश के राजा की कन्या थी। अतएव 5000 वर्ष पूर्व जब पांडव शासन कर रहे थे तो मणिपुर का अस्तित्व था और इसका राजा भी होता था। अतएव मणिपुर राज्य अत्यंत प्राचीन राजतंत्र वैष्णव राज्य था। यदि इसे वैष्णव राज्य के रूप में फिर से संगठित किया जाए तो महान सफलता प्राप्त हो सकती है, क्योंकि यह राज्य 5000 वर्षों से अपनी पहचान बनाए हुए है। यदि यहां वैष्णव वृत्ति का पुनर्जागरण हो तो यह सारे विश्व में अद्भुत स्थान सिद्ध हो सकता है। वैष्णव समाज में मणिपुरी वैष्णव अत्यंत विख्यात है। वृंदावन एवं नवद्वीप में मणिपुर के राजा के बनवाए हुए अनेक मंदिर हैं। हमारे कुछ भक्त मणिपुर के हैं, अतएव कृष्ण भक्तों के सहयोग से मणिपुर राज्य में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का भली भांति प्रचार हो सकता है। श्रील प्रभुपाद की, श्रीपाद भक्ति स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाराज की। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरुः श्रीयुता पदकमलं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमोम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य तथा भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी के आराध्य देव श्री श्री राधा रास बिहारी ललिता विशाखा जी, गिरिराज गोवर्धन श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी, श्री श्री गौरनिताय और आप सभी सज्जन वैष्णव जन के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए आज हम इस श्लोक संख्याएं जो है लगभग 5-6 श्लोक है इसके ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। तो कई सारे भक्तों ने मुझे वैयक्तिक रूप से मिलकर के कई बार आदेश दिया था, अनुरोध किया था, निवेदन किया था कि आप हिंदी में ही बोलिए, तो हम प्रयास करेंगे। आज के इस सभा में कुछ लोग, बहुत सारे लोग वृद्ध है, लगभग सारे ही लोग वृद्ध है, कुछ लोग वयोवृद्ध है, कुछ लोग धन वृद्ध है, कुछ लोग ज्ञान वृद्ध है, कुछ लोग तप वृद्ध है, कुछ लोग धिया वृद्ध है, धिया मतलब बुद्धि, कुछ लोग रूप वृद्ध है। तो हर कोई जो व्यक्ति है वो वृद्ध है हमारे से। वृद्ध मतलब बड़ा चढ़ा, प्रगत, केवल आयु से वृद्ध नहीं। जैसे सुखदेव गोस्वामी आयु में केवल 16 साल के थे, लेकिन उन वो भक्ति वृद्ध थे, इसीलिए तो नारद मुनि भी बैठ करके सुने। तो आज के इस चर्चा सत्र में आप सभी लोग वृद्ध हो, महान हो, तो आपके आशीर्वाद की मैं याचना करता हूं। आज का तात्पर्य तो आप लोगों ने श्रवण किया ही है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि कैसे मणिपुर जो प्रांत है एक वैष्णव राज्य है और वहां पर वैष्णव संस्कृति का उत्थान करना चाहिए, और वहां से कई सारे भक्त हमारे इस हरे कृष्ण आंदोलन में सम्मिलित हुआ है। तो निश्चित रूप से हम जानते हैं कि प्रभुपाद जी इंगित कर रहे हैं वहां के सारे भक्तों को, और खास करके श्रीपाद भक्ति स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाराज को। हालांकि मुझे महाराज जी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जैसा हम लीलावृत में पढ़ते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी के वो बहुत प्रिय शिष्य थे। ये जो श्लोकों का संचय है 26 से लेकर 32 तक, उसके ऊपर हम ज्यादा ध्यान दें तो हमें समझ में आता है कि भगवद गीता, श्रीमद् भागवत और चैतन्य चरितामृत का निचोड़ उसमें है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि भगवान कौन है, और कृष्ण कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो, मत्तः सर्वं प्रवर्तते, अहम आदिर ही देवानाम, कि वह जो भगवान है वह कृष्ण है। यह भगवद गीता का संदेश है, और कृष्ण बताते हैं आप मेरे अंश हो, ममे वांशो जीवलोके। तो प्रश्न उठता है, ठीक है हम आपके अंश है, आप भगवान हो, अभी करना क्या है? तो श्री कृष्ण भगवद गीता का समापन करते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। आप सब कुछ त्याग करके मुझे शरणाओ। तो यह भगवद गीता है कि भगवान कौन है और हमारे लिए आदेश क्या है। श्रीमद् भागवत जो है वो भगवान करते क्या है, उनका जो जीवनी है उसको भागवत बोलते हैं। वो भगवान क्या क्या करते हैं, उनके कार्यकलाप क्या है, उनकी लीलाएं क्या है, उनकी क्रियाएं क्या है। और चैतन्य चरितामृत जो है वह भगवान का मानसिकता बताते हैं, भगवान क्या सोचते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान ने भगवद गीता में अर्जुन को बताए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो हमारे जैसा साधक एक प्रश्न पूछ सकता है कि उसके कोई उदाहरण है क्या, ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं, सब कुछ छोड़ करके आपको शरण आए। तो भगवद गीता जो है कुरुक्षेत्र के युद्ध के प्रारंभ में बताई हुई है और श्रीमद् भागवत कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त होने के बाद शुरू होता है। पहला स्कंद सातवां अध्याय का शीर्षक ही है द्रोण पुत्र को दंड। क्या किया था द्रोण पुत्र ने? अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था 18वें दिन और वहीं से श्रीमद् भागवत प्रारंभ होता है परीक्षित महाराज के जन्म से। कैसे उत्तरा देवी ने सब कुछ छोड़ करके श्री कृष्ण भगवान को शरणागत हुई, कैसे उन्होंने भगवान का आश्रय लिया, सर्वधर्मान परित्यज्य, पहला उदाहरण। वहीं पर द्रौपदी का भी उदाहरण है, कैसे द्रौपदी माता ने भी भगवान का आश्रय लिया। जैसा कि मैं पिछले चर्चा सत्र में बोल रहा था, ये तीनों सास और बहू ने सारे भक्ति का सारांश अपने जीवन से प्रकट किया है और कुंती महारानी उसी 8वें अध्याय में अपने ऐसे अप्रतिम प्रार्थनाएं भगवान के चरणों में अर्पित करती हैं कि आज भी संत महंत परमहंस उनको स्मरण करते हैं और उनका स्मरण करने से हम भी शुद्ध हो जाते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य, सबको छोड़ करके ये लोग शरणागत हो गए। अभी हम चर्चा करेंगे, जैसा कि पिछले 2-3 श्लोक के पहले भीष्म पितामह का वर्णन आया था, उनका वर्णन 9वें अध्याय में आता है, कैसे वे भी भगवान को बहुत कठिन और विकट परिस्थितियों में शरणागत हुए। श्री श्री राधारास बिहारी सीताराम लक्ष्मण हनुमान गौरनिताय श्रील प्रभुपाद की जय। उसी तरह से हम आगे जाकर के देखते हैं कि कैसे पांडव कृष्ण को शरणागत हुए। दूसरे स्कंद में ब्रह्मा जी जब तपस्या, जब उनको ये 2 अक्षर सुनाई दिए तप, वो शरणागत हुए, 1000 साल तपस्या किए। यह दूसरा उदाहरण है सर्वधर्मान परित्यज्य का। पहले तो उन्होंने बहुत प्रयास किया था कमल की डंडी में जाकर के कुछ खोजने का, ढूंढने का। तीसरे स्कंद में हम देखते हैं विदुर महाशय कैसे सब कुछ छोड़ करके भगवान को शरणागत हुए। कर्दम मुनि भी, हालांकि भगवान उनके घर में प्रकट हुए हैं, वो भी छोड़ करके जंगल में चले गए भगवान को शरणागत होने के लिए। चौथे स्कंद में ध्रुव महाराज है, पृथु महाराज है, वे भी भगवान को शरणागत हुए। हम देखते हैं ये सारे उदाहरण जो है श्रीमद् भागवतम में दिए गए हैं सर्वधर्मान परित्यज्य के। छठे स्कंद, 5वें स्कंद में भरत महाराज है, 6वें स्कंद में अजामिल है, वृत्रासुर है, 8वें स्कंद में गजेंद्र है, बलि महाराज है, सर्वधर्मान परित्यज्य। शुक्राचार्य कुछ भी बोले हम ध्यान नहीं देंगे। 9वें स्कंद में ययाति महाराज है, बहुत सारे उदाहरण है और गोपियों का उदाहरण सर्वधर्मान परित्यज्य इस श्लोक के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है, वह भी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा। तो यही सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए कई सारे उदाहरण भागवत में प्रस्तुत किए गए हैं और इसमें कई सारे नाम अभी हम आज के श्लोक में देखते हैं। गांधार्याम धृतराष्ट्रस्य जज्ञे पुत्र शतम नृपः तत्र दुर्योधनो ज्येष्ठो दुःशाला चापि कन्यका। 26वां श्लोक है और आगे सारे वर्णन है। अगर हम देखें भीष्म पितामह का जीवन चरित्र, कुरुवंश का वर्णन है, किसी प्रकार की उनके जीवन में कमी नहीं थी। उनके गुरु थे परशुराम जिन्होंने उनको धनुर्विद्या सिखाई थी। ये पूरे ब्रह्मांड में भीष्मदेव जैसा योद्धा था ही नहीं, ऐसा वर्णन किया जाता है। 1000 अर्जुन के बराबर थे वो। सारे देवताओं का सैन्य और दानवों का सैन्य एक साथ मिलकर भी अगर पितामह भीष्म से युद्ध करे तो भी वह जीत नहीं पाते थे। यहां तक कि जिन भगवान परशुराम ने 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का संहार किया था, जब वो युद्ध कर रहे थे तो मन की गति से करते थे और जब थक जाते थे तो वायु की गति से करते थे। तो ऐसे भगवान परशुराम को प्रभुपाद जी लिखते हैं कि पराजित किया था भीष्म देव ने, तो कितने शक्तिशाली होंगे वो भीष्म पितामह। ऐसा नहीं कि केवल उनके पास शारीरिक बल था, उनके पास नीतिमत्ता थी, धर्म था। श्रीमद् भागवत कहता है कि वह 12 महाजनों में से एक है, धर्मान भागवताम यह। वो 12 महाजन जो है वो धर्म अच्छी तरह से जानते हैं। तर्को प्रतिष्ठाम श्रुतयो विभिन्ना नासा ऋषिर्यस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो ने नगतः सपंथ। ये जो महाजन है उनको धर्म का गूढ़ रहस्य ज्ञात होता है। इनके पास नीतिमत्ता थी, धर्म था, ज्ञान था और बल भी था। हम ऐसा कह सकते हैं कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च काबिल नवयुवक थे वो। उससे ऊपर कोई प्रशिक्षण है ही नहीं, कौन सा भी विश्वविद्यालय दे नहीं सकता, उसके ऊपर की कोई पदवी है ही नहीं। तो उन्होंने, जैसा हमने देखा कि अपने पिता के प्रसन्नता के लिए अपना राज्य त्याग दिया। जब वो दाशरथी के पास आए, सत्यवती के पिता के पास, तो उन्होंने बोला कि मेरे पिता की इच्छा है कि आपके पुत्री से विवाह करें, तो आप इसके अनुमति दो। वो कैसे संभव है, आप तो राजकुमार हो, युवराज हो, आप राजा बनेंगे। वहां पर भीष्म पितामह प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं कभी राजा नहीं बनूंगा। ठीक है, आपकी प्रतिज्ञा में मान लेता हूं, लेकिन आप जब विवाह करेंगे तो आपके पुत्रों का क्या, आजीवन मैं ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं कभी भी विवाह नहीं करूंगा। ये दूसरी प्रतिज्ञा। तो तीसरा प्रश्न पूछते हैं, ठीक है आप राजा नहीं बनोगे, आप विवाह नहीं करोगे, लेकिन समझो आप किसी से संगन मत करके, आप किसी से युति करके मेरे नाती के खिलाफ आप बंड युद्ध पुकारोगे तो क्या। तो तीसरी प्रतिज्ञा करते हैं, जो भी हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठेगा उसके चेहरे में मेरे पिताजी की छवि देखूंगा और उसके चरणों की सेवा करूंगा। इसी वचन के खातिर पितामह भीष्म, हालांकि धृतराष्ट्र अंधा था और धार्मिक रूप से भी अंधा था और दुर्योधन सभी प्रकार के अन्याय कर रहा था, फिर भी उन्होंने अपने ये प्रतिज्ञा के कारण उनके प्रति एकनिष्ठ रहे। फिर वो लेकर के आते हैं सत्यवती को, और जैसे ही शंतनु महाराज ये देखते हैं अपने पुत्र का त्याग, तो वो उनके मन को बहुत दुख लगता है, उनको वरदान देते हैं इच्छा मृत्यु का। और कुछ समय उपरांत वह जंगल में चले जाते हैं, जब उनको चित्रांगद और विचित्र वीर्य प्राप्त होते हैं। यहां तक तो सब ठीक था भीष्मदेव के जीवन में। भीष्मदेव के जीवन में यहां तक तो ठीक था, लेकिन जैसे चित्रांगद का युद्ध में मृत्यु हुआ और विचित्र वीर्य भी क्षय रोग के कारण चले गए, वहां से भीष्मदेव के जीवन में हर एक प्रयास आप देख सकते हैं विफल हो गया है। हालांकि भौतिक दृष्टिकोण से यह जो महात्मा है वो सारे स्तर तक उच्चतम है, लेकिन उन्होंने किया हुआ हर प्रयास विफल हुआ है। यही तो भगवान श्री कृष्ण सिखाना चाहते हैं। जब वो अंबा अंबिका अंबालिका को लेके आते हैं और व्यासदेव जी आते हैं, तो पहला पुत्र उत्पन्न होता है धृतराष्ट्र। जैसा कि हमने कल प्रवचन में सुना, वह अंधा हो गया अंबिका के गलती के कारण। दूसरा पुत्र हुआ, वह भी कमजोर उत्पन्न हुआ, पांडु। और तीसरा पुत्र विदुर उत्पन्न हुआ, लेकिन वह दासी के गर्भ से उत्पन्न हुआ। यह क्यों किया भीष्म पितामह ने? क्योंकि सत्यवती माता ने भीष्म पितामह को बोला था कि मेरे पिता ने यह वचन लिया था आपसे कि मेरे ही पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर राजा बनेंगे, वो दोनों मर गए हैं, अभी आप राजा बन जाओ। लेकिन यह अपनी माता की आज्ञा को बाजू में रख करके राज्य कैसा चलाएं, इसका सुझाव वो ढूंढ रहे थे अपना वचन का पालन करने के लिए। तब सत्यवती माता अपना पूर्व जीवन वर्णन करती है और व्यासदेव का पूरा इतिहास बताती है। तब जाकर के भीष्म पितामह व्यासदेव को बुलाते हैं और ये धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म होता है। तो भीष्म पितामह को यह हमेशा चिंता थी कि कैसे राज्य को आगे बढ़ाने वाले राजकुमार, सुदृढ़ राजकुमार उत्पन्न किए जाए। तो उन्होंने कहीं से सुना था गांधारी गांधार्याम धृतराष्ट्रस्य जज्ञे पुत्र शतम नृप। गांधारी को वरदान था 100 पुत्र उत्पन्न होंगे। चलो, तो उन्होंने अपना सारा सैन्य दल लेकर के गांधार, आजकल का अफगानिस्तान, वहां पर आए। आक्रमण नहीं किया, वो आए और जैसे ही दूर से अपने अपने राजमहल के अट्टालिकाओं से शकुनी और गांधार नरेश ने देखा कि यह तो हस्तिनापुर नरेश का सैन्य है, शायद हमारा राज्य वह काबिज कर लेंगे, उनको आने तो दो। वो आते हैं और वो प्रस्ताव रखते हैं कि हमें गांधारी पुत्र वधु के रूप में चाहिए। तो शकुनी बहुत प्रसन्न हो जाता है, उनको लगता है कि पांडु के लिए उन्होंने मांगा है। वो बाद में बोलते हैं कि धृतराष्ट्र के लिए। तो शकुनी बहुत दुखी हो जाते हैं और भीष्म पितामह को ना नहीं बोल सकते, कौन ना बोलेगा, तो उन्होंने दे दिया। तो यही जड़ है शकुनी के ईर्ष्या की, पांडवों के प्रति की। क्योंकि शकुनी को मालूम था कि भीष्म पितामह पांडवों के प्रति असीम प्रेम करते हैं, अगर मैं पांडवों को परेशानी दूंगा, उनको कुछ कष्ट दूंगा, तो भीष्म पितामह को बहुत कष्ट होगा। तो इसी कारण शकुनी हस्तिनापुर में स्थायी हो गए थे। तो वहां से उन्होंने गांधारी को लेके आए और 100 पुत्र हो गए। जैसे आज के श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, गांधार्याम धृतराष्ट्रस्य जज्ञे पुत्र शतम नृप, उनको 100 पुत्र हो गए। क्योंकि भीष्मदेव ने सोचा कोई चिंता ही नहीं, एक मर गया तो दूसरा बिठाएंगे गद्दी पर, मुझे मां बोलेगी ही नहीं राजा बनो, कोई समस्या ही नहीं, मैं ऐसे ही आजीवन ब्रह्मचारी रह जाऊंगा। 100 के 100 है ना, एक चला गया दूसरा बिठाएंगे, दूसरा गया तीसरा बिठाएंगे, चौथा बिठाएंगे, क्या समस्या है। इस विचार से भीष्म पितामह ने उनको लेके आया था और एक पुत्री भी थी जिसका नाम था दुःशला। फिर पांडु का भी विवाह हुआ था कुंती महारानी के साथ। थोड़ी समस्या यह हो गई कि कुंती ने पहले पुत्र को जन्म दिया गांधारी के, युधिष्ठिर को, और तब से जाकर के ईर्ष्या पलने लगी कुरु गृह में। फिर हम जानते हैं ये पांडु महाराज जो थे वो ज्यादातर ऋषि थे, साधु थे, जंगल में रहना, पहाड़ों में रहना पसंद करते थे और कम राजा थे। उनकी जो रुचि थी जंगल में और पहाड़ों में रहने में ज्यादा थी, तो वह हमेशा हिमालय में जाया करते थे। आप अगर बद्रीनाथ धाम कभी गए हैं तो रास्ते में ही जोशी मठ के बाद एक पांडुपुर आता है, वहां पर आसपास कभी कभी वो रहा करते थे। और वहां पर किंदम मुनि के श्राप से उनको पुत्र उत्पत्ति नहीं हो सकती थी। तो हम देखते हैं आज के श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि कैसे धर्मराज को आवाहन करके कुंती ने युधिष्ठिर को जन्म दिया, फिर वायुदेव को आवाहन करके भीम को जन्म दिया, और अर्जुन को इंद्रदेव के द्वारा, और अश्विनी कुमार ने माद्री के द्वारा नकुल और सहदेव को जन्म दिया। समस्या भीष्मदेव के यहां खत्म नहीं होती। जब पांडु का मृत्यु हुआ तो कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र को राजा बनाया, जब तक ये बालक बड़े नहीं होते तब तक के लिए कुछ सीमित समय था। लेकिन धृतराष्ट्र को आसक्ति दृढ़ बन गई और वो छोड़ना नहीं चाहते थे, लगभग आजकल के राजनेताओं की तरह। धृतराष्ट्र मतलब एक बार गद्दी पे बैठे तो हटने का नाम ही नहीं लेते। जब तक प्रभुपाद जी लिखते हैं, कई बार बोलते हुए, गोली से जब तक उड़ाते नहीं या बम से मारते नहीं तब तक ये छोड़ना ही नहीं चाहते, बोले ये धृतराष्ट्र की मानसिकता है। तो हम जानते हैं सारा महाभारत आगे वाला, पितामह को बहुत दुख होता था, उन्होंने इतना सारा नियोजन करके रखा था धर्मराज को ही धार्मिक राजा बिठाने के लिए गद्दी पर, लेकिन संभव ही नहीं हो पा रहा था। फिर कई सारे विपदाएं आते हैं पांडवों के जीवन में, शकुनी और दुर्योधन के माध्यम से। और हम जानते हैं भीष्म पितामह का जो प्रण था, प्रतिज्ञा थी कि मैं हमेशा हस्तिनापुर के जो राजा है उनको ही मैं आज्ञाकारी रहूंगा। जब युद्ध में खड़े होते हैं तो भगवान श्री कृष्ण उस पक्ष में है और इधर भीष्म पितामह है। उनकी वो भी जो इच्छा थी वो भी पूरी नहीं हुई, वो बचा नहीं पाए कौरव सेना को। जो जो नियोजन भीष्म पितामह ने किया था वो सारे नियोजन विफल हो गए हैं। ऐसा कह सकते हैं कि हालांकि सर्वोत्तम काबिल महान योद्धा राजर्षि होने के बावजूद वह विफल हो गए। तो ऐसे कैसे बोल सकते हैं हम, लेकिन दिखता तो ऐसे ही इतिहास में, भागवत में, महाभारत में। श्रीमद् भागवत के अनुसार ऐसा नहीं है। जैसा हम नवे स्कंद में देखते हैं भीष्मदेव का महानिर्वाण जो है वह इस श्लोक से अनुबोधित करता है, एतावान् सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। आप जीवन में कितना पुण्य किए, कितना पाप किए, कितना धर्म किए, कितना अधर्म किए, कितना क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया है, इसका सही मायने में जो परीक्षा है या उसका नापतोल है वह मृत्यु के समय गिना जा सकता है। अंते नारायण स्मृति, इसलिए बंगाली में कहावत है, भोजन करे, भजन करे, साधन करे, मरते जानबे, मृत्यु के समय क्या किए। तो उसी समय हम जानते पंच पांडव को लेकर के भगवान श्री कृष्ण वहां पर आते हैं और उनको अपना दर्शन देते हैं। और महाभारत का भीष्म पर्व इसी प्रसंग के ऊपर आधारित है, जो सबसे बड़ा पर्व है, सबसे ज्यादा श्लोक इसी में है। आप सोचिए, सारे शरीर में, सभी दिशाओं में, दो बाणों के बीच में उंगली नहीं घुस सकती थी। ऐसी अवस्था में अगर हमें कुछ कांटा लगे या सुई लगे डॉक्टर साहब की, तो हम कितना चिल्लाते हैं। आप सोचिए, अर्जुन के बाण हैं और एक नहीं है, दो बाण के बीच में एक उंगली नहीं जा सकती थी। ऐसी अवस्था में उन्होंने सबसे बड़ा प्रवचन दिया है महाभारत का। और जब युधिष्ठिर महाराज शोक कर रहे थे कि मेरे कारण युद्ध हुआ, मेरे कारण इतने लोग मर गए, इतने माताएं विधवा हो गई, इतनी महिलाएं विधवा हो गई,
मेरे कारण हुआ, मेरे कारण हुआ, मेरे कारण हुआ। इस शोक को दूर करने के लिए श्री कृष्ण उनको आदेश देते हैं कि आप पूरा राज परिवेश, राज वस्त्र आभूषण अलंकार पहन करके भीष्म पितामह के सामने आइए, क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे उनके मन की इच्छा कि हस्तिनापुर का राज्य, उनके पिता का राज्य किसी योग्य व्यक्ति के हाथ में आए, और कौन हो सकता है युधिष्ठिर महाराज से भी बढ़कर योग्य व्यक्ति। इसलिए वहां पर आते हैं प्रभुपाद जी, उस तात्पर्य में लिखते हैं भीष्म पितामह जैसे धुरंधर व्यक्ति के लिए उनका जो अंत संस्कार है युधिष्ठिर महाराज जैसा ही महात्मा कर सकता है। यह एक बहुत बड़ा सम्मान था एक दूसरे के लिए। वहां पर वो बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं और युधिष्ठिर को समझाते भी है कि नहस्य करहिचित राजन पुमान वेद विदित सितम यद विजिज्ञासया युक्ता मुह्यंती कवयोपि। हे राजन, आप शोक मत करो, आप जितना भी भगवान के नियोजन को जानने का प्रयास करोगे उतना विमोहित हो जाओगे। सर्वम कालम कृतम मन, ये तो काल ने किया है। काल को ने एश वै भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान, यही तो है भगवान श्री कृष्ण गूढ़श्चरति वृष्टिषु, ये वृष्णि वंश में आए हैं, इन्होंने सब किया है, आप चिंता मत करो। तो यह भीष्मदेव की मानसिकता थी उनके जीवन के प्रारंभ से अंत तक। यह सब भगवान का नियोजन है, उन्होंने अपने सारे प्रयास किए लेकिन भगवान नहीं चाहते थे कि वो उधर सफल हो जाए। भगवान का नियोजन कुछ और होता है, और यही सिखाने के लिए पूरा भागवत बताया है कि कैसे भीष्मदेव उनको शरणागत हुए। जब भीष्मदेव का महानिर्वाण हो रहा था तो उसमें पहले स्कंद में सारे ऋषियों का वर्णन है। स शिष्यो रेणुका सुतः, भारद्वाज मुनि, कश्यप मुनि, सारे सारे सप्तऋषि रेणुकासुत मतलब परशुराम भगवान अपने शिष्यों को लेके आए थे। महान भागवत कथाकार परम पूज्य राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज कहते हैं अपने अपने आश्रम को ताला लगा करके आए थे सब लोग। क्यों? क्योंकि यहां पर अभी भीष्मदेव जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाने वाले थे कि कैसे मृत्यु के समय हमें भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। इसलिए तो परशुराम भगवान अपने शिष्यों को लेकर के आए थे, इसी का मतलब है अपने आश्रम को ताला लगा करके आए थे, किसी को ना नहीं रखा था पीछे उधर कि चलो अभी भीष्मदेव क्या बताने वाले। और वहां पर सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं, विजय रथ आत तोते कुटुंब, कि आप पार्थ सखा, आप अर्जुन के सखा पार्थ सारथी के रूप में मुझे दर्शन दिए। बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं गोपियों के लीलाओं का स्मरण करते हुए भी। तो हो सकता है अपने जीवन में हम कितने भी काबिल हो लेकिन हमारा ऐसा नहीं कि हर प्रयास सफल ही होगा। अगर राधा राजबिहारी चाहे तो वो विफल भी हो सकता है, अगर वो चाहे तो सफल भी हो सकता है। इसीलिए हमें हर समय में हर क्षण भगवान को स्मरण करना है, उनको शरणागत होते हुए। तत्यानुकंपाम सुषमिक्षमानो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, ये भगवान आपकी ही कृपा है, यही मानसिकता थी भीष्मदेव की। और इनको जो पांच पांडव हुए इनका भी तो यही भाव है, जैसा कि वर्णन है यहां पर युधिष्ठिर महाराज का कैसा जन्म हुआ, फिर उनके कौन से पुत्र थे, उनके कौन से पुत्र थे। ये केवल उन्होंने पारिवारिक जीवन भोगने के लिए विवाह नहीं किया था, ये राजर्षि लोग जो थे पूरे दुनिया का संचालन करने के लिए अच्छे राजा के राजकुमार के लिए उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेते थे, जिम्मेदारी लेते थे, और उस हिसाब से उस उद्देश्य से वो सेवा करते थे। और जिस समय भगवान चले गए तो उसी समय पांडव भी चले गए। वंचितोहम महाराज हरिना बंधु रूपिना, जब अर्जुन ने उनको संदेश दिया कि श्री कृष्ण भगवान चले गए हैं तो युधिष्ठिर महाराज ऐसे ही चले गए परीक्षित को राजा बना करके। जैसा कि हम उत्तरा देवी के बारे में चर्चा कर रहे थे, वह उत्तरा देवी, उनका और कुछ भाग बाकी था, समय नहीं था उस समय, अभी हम उसका चर्चा करने का प्रयास करेंगे।
यही मानसिकता ये पांडव परिवार की, कुरु परिवार की भगवान के प्रति है, सर्वधर्मान परित्यज्य, जो कुछ भी हो जाए भगवान हम आपको शरणागत होंगे। ये जो सारे राज्य है उन्होंने ऐसे ही संचलित किए थे। हस्तिनापुर मुख्य राजधानी थी और जो आज के मणिपुर का वर्णन आता है ऐसा राज्य मद्र नरेश मतलब मद्रास, माद्री जो थी मद्रास से थी, आजकल जिसको चेन्नई कहते हैं, तो वहां का राज्य, ये सारे राज्य हस्तिनापुर के सम्राट वैष्णव के रूप में उसको संवर्धित करते थे। इसलिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य में बोलते कि वो वैष्णव राज्य था और उसको वहां संवर्धन करने का आवश्यकता है। तो उत्तरा देवी भी ऐसे ही एक परिवार से आई थी और जैसा कि हमने चर्चा किया कि बहुत कोमल बालिका थी, लगभग 14-15 साल की, और 18 दिन में उसका भूतकाल मतलब पिता भाई मर गए थे, उसके पति वर्तमान भी मर गया था और भविष्य भी अंधकार में था अश्वत्थामा के कारण, पुत्र उसका, फिर भी वो भगवान को शरणागत हुई और भगवान ने उसको बचाया, उनके गर्भांकुर को, और वो राजा बन गए। अभी इकलौता पुत्र है, पूरे पृथ्वी का सम्राट है। ऐसी अवस्था में उस राजर्षि को, उस महान राजा को 7 दिन में मरने का श्राप मिल गया। अभी वो मां को कैसे लगता होगा, क्योंकि अगर परीक्षित को शाप मिला उनके युवावस्था में तो माता भी कुछ ज्यादा बूढ़ी नहीं हुई थी, उत्तरा देवी को बहुत दीर्घायु मिली थी। अभी हम चर्चा करेंगे कैसे, जब परीक्षित को श्राप मिला तो उत्तरा देवी का भी ज्यादा आयु नहीं हुई थी, तो उनको कैसे लगा होगा। इकलौता पुत्र जो पृथ्वी का सम्राट है उसको 7 दिन में मरने की भविष्यवाणी हुई है और कोई दूसरा है ही नहीं है, मतलब उत्तरा देवी के जीवन में संकटों का श्रृंखला ही है, संकटों की श्रृंखला ही है शुरुआत से लेकर अंत तक। और जब 7 दिन पूरे हुए सुखदेव गोस्वामी चले गए, जैसा कि हम एक प्रवचन में सुने हाल ही में, तो उसके बाद अभी तक्षक कभी भी आके उनको दंश कर सकता है। जो कुछ चंद समय बाकी था उसमें आकर के वो पूछते हैं कि आपने जो सुना मुझे सुनाइए, और वो जो कथा सुनाते हैं देखो क्या मानसिकता है, उनको उसी समय भी भगवान की कथा सुननी है। इसको कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, यह है कुरु परिवार, यह है पांडव परिवार। उसमें भी आकर के वो बोलते भगवान के बारे में जो भी आपने सुना है मुझे बताइए, और सनातन गोस्वामी ने उसको ग्रंथ के रूप में सादर किया है जिसका नाम है बृहत भागवतामृत। उसके बाद तक्षक जो आते हैं परीक्षित को दंश करते हैं। ऐसा वर्णन है कि परीक्षित महाराज पहले भगवत धाम जा चुके थे और उनका शरीर था, और जो मृत शरीर था उसको आकर के तक्षक ने दंश किया, वैसे भी उसको जलाया जाता है। और परीक्षित महाराज श्राप मिलने से पहले उन्होंने मथुरा के जो राजा थे वो नियोजित किए थे वज्रनाभ को। वज्रनाभ जो है वह कृष्ण के पुत्र के पुत्र के पुत्र थे, मतलब कृष्ण के पुत्र का नाम प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र का नाम अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पुत्र का नाम वज्रनाभ। इनको परीक्षित महाराज ने मथुरा मंडल का राजा बनाया था और उसके बाद उनको श्राप मिला था, फिर उसके बाद वो भगवत धाम चले गए। और उत्तरा देवी जन्मेजय महाराज और इत्यादि अपने नातियों के साथ रह रही थी, उनको दीर्घायु मिला था। जब वज्रनाभ मथुरा मंडल में खास करके वृंदावन ब्रज में आए और वो चाहते थे कि भगवान श्री कृष्ण के जो जहां जहां लीलाएं हुई वहां वहां कुछ कुछ स्मारक स्थापन करें, कुछ मूर्तियां भगवान के विग्रह स्थापन करें, तो उन्होंने भगवान का विग्रह बनाया, गोविंद देव का पहला विग्रह। लेकिन ये भगवान के जैसा बनता है इसका प्रमाण क्या है? देखा है भगवान के जैसा ही बना हुआ है, इसका प्रमाण क्या है? और यह बताने के लिए, यह प्रमाणित करने के लिए उन्होंने उत्तरा देवी को दिखाया, क्योंकि वही एक उस समय अकेले जीवित थी जिन्होंने श्री कृष्ण को देखा था आमने सामने। तो उत्तरा देवी बताती है, ये जो गोविंद देव है इनका नाम है गोविंद देव, उन्होंने नाम दिया, और इनका मुख कमल साक्षात भगवान श्री कृष्ण से मिलता जुलता है। फिर गोपीनाथ का विग्रह दिखाया और बताया कि इनका जो वक्षस्थल है साक्षात श्री कृष्ण से मिलता जुलता है। और मदन मोहन के दिखाए तो बोले कि यह इनके चरण कमल साक्षात श्री कृष्ण से मिलता जुलता है। और उनकी स्थापना ब्रज में उस समय की थी। कई सारे विग्रहों के निर्माण के बाद उत्तरा देवी ने उनको प्रमाणित करके वज्रनाभ के मदद से वहां पर उन्होंने स्थापन किया था। श्री चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले जब ब्रज यात्रा किए तो वो जानते थे कि ये सब वज्रनाभ ने स्थापित किया है, लेकिन बहुत सारी जो लीला स्थल और विग्रह लुप्त हो गए थे, दृश्य नहीं होते थे, तो उन्होंने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को आदेश दिया था कि उसका पुनरुत्थान करें। उसके पश्चात जाकर के रूप गोस्वामी ने गोविंद देव और सनातन गोस्वामी ने मदन मोहन और मधु पंडित दास जो महात्मा हुए उन्होंने गोपीनाथ का प्रकटीकरण किया। ऐसे कई सारे विग्रह प्रकट हुए, कुछ बाद में भी प्रकट हुए। तो सारांश में आजकल का जो वृंदावन हम दर्शन करते हैं वह उत्तरा देवी की देन है। ये उत्तरा देवी का कलयुग के लिए वरदान है, नहीं तो हम क्या दर्शन करते थे आज? मतलब यही श्री कृष्ण की रासलीला हुई, यहां पर कालिया को मारा, यहां पर ये हुआ वो हुआ, यह सब जो है उत्तरा देवी के मार्गदर्शन में हुआ था। हम सोच सकते हैं थोड़ा सा हमारे जीवन में कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए तो हम कितने सारे गाली गलौज करने लगते हैं। एक ब्रह्मचारी मेरे पास आए, बोले प्रभु जी मैं तो कड़ी पत्ता बन गया, मेरा उपयोग तो कड़ी पत्ता की तरह किया जाता है, जब छोक लगाना है उबले हुए तेल में डाला जाता है, लेकिन जब खाने का समय आता है तो निकाल के बाहर फेंक देते। तो हमारे जीवन में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, एक आध गुलाब जामुन, दो गुलाब जामुन देने के बजाय एक दिया जाता है तो दो बार देखते उसको देने वाले को। यहां पर भीष्म पितामह है, उत्तरा देवी है, परीक्षित महाराज है, भागवत के सारे संत महंत है, वो इतने सारे विपद आने के पश्चात भी भगवान को शरणागति होते हैं, वो भगवान को भूलते नहीं है। कितने सारे विपद है और ऐसे बड़े बड़े है कि हमारे लिए कुछ सीखने जैसा है। तो ये सारे आचार्यों से, महाजनों से हमें यही सीखना चाहिए कि हमारे अंदर वो भावना आए, क्योंकि जैसा मैं बोल रहा था कि भगवत गीता में अंतिम आदेश दिया है सर्वधर्मान परित्यज, और भागवत में ये सारे उदाहरण दिए, किसी भी परिस्थिति में वो शरणागत होते हैं। तो अभी अर्वाचीन समाज में, आधुनिक समाज में हमें कैसे शरण होना है, ये प्रश्न उत्पन्न होता है। तो भागवत उसी श्लोक से अंत होता है, ये 12वें स्कंद का अंतिम श्लोक है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरिम परम। मैं उन भगवान हरि का नमन करता हूं कि जिन्होंने संकीर्तन का प्रारंभ किया है, या जिनका हरिनाम संकीर्तन सारे पापों को मुक्त करता है, और उसी से चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत शुरू होता है। इस संकीर्तनैक पितरौ कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्रायर यजन्ति ही सुमय दशा। यह जो संकीर्तन है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम, इसमें सहभाग लेने से, इसमें सम्मिलित होने से हमारे सारे विपद जो है, जितने विपद हमने भीष्मदेव के जीवन में देखे हैं, जितने पांडव उत्तरा देवी कुंती महारानी द्रौपदी के जीवन में देखे या भागवत में देखते हैं, उतने बड़े तो शायद हमें आने वाले नहीं है, बहुत छोटे छोटे रहेंगे। लेकिन जैसा उन्होंने आश्रय लिया वैसा अभी हम लेंगे श्रील प्रभुपाद जी के मार्गदर्शन में। जैसा कि उन्होंने कितना संघर्ष किया, अगर आप प्रभुपाद जी के 1965 के पहले के पत्र पढ़ेंगे, अमेरिका जाने से पहले के, उसमें हमें समझ में आएगा प्रभुपाद जी की मानसिकता क्या थी। ये संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करते समय कितना संघर्ष उन्हें करना पड़ा, 100-200-300 रुपए के लिए प्रभुपाद जी को कितना झिकझिक करना पड़ता था। प्रभुपाद जी एक पत्र में लिखते कि कृपया मुझे 500 रुपए दीजिए, न तो यह व्यक्ति आके मुझे बहुत अपमानित करेगा। कितना संघर्ष करना पड़ा इन लोगों को, फिर भी वो जब उनको करोड़ों की संपत्ति मिली, 108 मंदिर बने, और जाते जाते वो बोले कुछ इच्छा नहीं, यह है महाजन। तो ऐसे हमें मानसिकता होनी चाहिए। यह संकीर्तन आंदोलन बहुत सरल है, आचार्य की भाषा में केवल आनंद कंद, प्रभुपाद जी लिखते हैं केवल क्या है, चैंटिंग डांसिंग एंड फीस्टिंग, और कुछ है ही नहीं। कल अमेरिका से नेशनल ज्योग्राफिक चैनल से कुछ संवाददाता आए थे और उनको कुछ योगा कुछ धर्म उसके बारे में छाया चित्रण करना था, तो मैंने उनको बोला आओ हम आपको डांसिंग योगा दिखाते हैं। और जैसे ही वो इधर आए उनको दर्शन कराया और प्रयास किया हमने अपने सारे वैष्णवों के साथ नृत्य कराने का और कीर्तन में भाग लेने का। उन्होंने बहुत उत्साह से भाग लिया और उसके उपरांत उनके जब मैं मुलाकात ले रहा था उनको मैं प्रश्न पूछ रहा था आपको कैसे लगा, बोले फैंटास्टिक, बहुत अच्छा। ऐसा लग रहा था उनके भाषा में बोले तो वो बोले कि आई वॉज ड्राउनिंग इन द ओशन ऑफ लव ऑफ गॉड। मैं बोला ये क्या भाषा है, ये कहां से सीख के आए। मुझे लगा कि मैं भगवान के प्रेम सागर में डूब रहा हूं। ये पहली बार हरे कृष्ण मंदिर में आए हुए व्यक्ति का अनुभव था, केवल आनंद कंद। और वो पूरा कर्मी है, पूरा कर्मी है। तो यह प्रभुपाद जी का वरदान है, श्री चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद है कि कैसे हमें सर्वधर्मान परित्यज्य, इन सारे आचार्यों को प्रभुपाद जी को सामने रखते हुए बहुत सरल आसान तरीके से दिया है। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं, कई बार बोलते भी है कि जो हिमालय के योगी हिमालय में तपस्या कर करके प्राप्त नहीं करते, हजारों साल नीचे मुंडी ऊपर पैर करके नाक दबा दबा करके जो प्राप्त नहीं कर पाते, वो हमारा हरे कृष्ण भक्त गुलाब जामुन खा करके प्राप्त करता है। तो धन्यवाद। अगर किसी को कोई टीका टिप्पणी हो तो बोल सकते हैं।
हरे कृष्ण। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जब परीक्षित महाराज उनके माँ के गर्भ में थे, तब भगवान ने उसको गर्भ में प्रवेश किया और वो ब्रह्मास्त्र को विफल किया और परीक्षित को बचाया। जब ब्राह्मण बालक ने उनको शाप दिया परीक्षित को, तब भी प्रभु उनको बचा सकते थे, तथापि वे भागवतम के लाभ होने के लिए उनको नहीं बचाए, तो प्रभु की इच्छा से सब हुआ। और जब एक समय एक तक्षक जो है ब्राह्मण के रूप में जा रहा था, और उसी समय वैद्य आया उधर से, वैद्य बोला, वैद्य को पूछा तो कहाँ जल्दी जल्दी जा रहा है, उसने बोला मैं तक्षक साफ है ना, वो तो सर्पदंश करने वाला है परीक्षित महाराज को, मैं उसको बचाऊंगा और मुझे बहुत धन लाभ होगा। तो जो ब्राह्मण वेश में तक्षक था उसने बोला, सामने एक बरगद का पेड़ था, बरगद का पेड़, और वो पेड़ पर एक व्यक्ति पत्ते तोड़ रहा था, पत्ते हरे हरे पत्ते तोड़ रहा था, तब बोला देखो मैं हूं तक्षक, मैं इसे दंश करता हूं और आप जीवित करके दिखाओ। जब उसने दंश किया वो पेड़ के साथ वो व्यक्ति जलकर भस्म हुआ, और फिर बाद में वैद्य ने मंत्र उच्चार किया और उसको पानी फेंका अभिमंत्रित करके, तो वैसा ही पेड़ वही व्यक्ति वापिस जीवित हो गया। तो बोला कि अभी आगे बढ़ो मत, आपको जो धन राजा देने वाला है उससे सातपट में देता हूं और आप यहां से वापस लौट जाओ। फिर वो उसे धन लेकर चला गया और आगे परीक्षित को बचाने के लिए नहीं आया। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। वो वैद्य का नाम है कश्यप मुनि।
अच्छा।
वो कश्यप मुनि थे और वो अभी भी गांव है, मोडना नामक गांव है।
हाँ।
हरिद्वार और मेरठ के बीच में आसपास है उधर मोडना, वहीं से कश्यप मुनि आ रहे थे परीक्षित महाराज को बचाने के लिए और तक्षक उधर से आ रहे थे।
हाँ।
और तक्षक जैसा आपने बताया वैसे तक्षक को बोलते हैं कि मैं परीक्षित को बचाने जा रहा हूँ। और जैसा अभी आपने कहा कि उन्होंने एक क्या बोलते हैं उसको सैंपल भी दिखाया, एक नमूना दिखाया कि ऐसे हो सकता है, फिर उन्होंने बोला कि ऐसा मैं जीवित कर सकता हूँ। तो फिर जितना भी दक्षिणा चाहिए मेरे से ले लो, चले जाओ यहाँ से, मुड़ जाओ। तो वहीं से मुड़ जाते हैं और अभी भी गांव का नाम है मोडना।
अच्छा।
उधर ही वो क्या नाम है वो भागवत जहाँ पे बताया गया शुकताल, शुकताल के आजू बाजू में वही अभी भी गांव है वो। प्रश्न।
हरे कृष्ण। हमने पांडवों की वंशावली देखी, युधिष्ठिर महाराज और सबके पुत्र के नाम गिनाए गए, तो परीक्षित महाराज को क्यों राजा बनाया गया? लाइक अभिमन्यु का पुत्र क्यों राजा बना? युधिष्ठिर महाराज की जो वंशावली है उनके पुत्र के पुत्र क्यों नहीं राजा बने?
इसका उत्तर भागवत के दशम स्कंद के प्रारंभ में मिलता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि क्यों अब ये नवम स्कंद लगभग अभी समापन होने आया है, एक दो अध्याय में समाप्त हो जाएगा, और इसमें भगवान के मुखमंडल का वर्णन होता है। नवे अध्याय के जो अंतिम श्लोक है उसमें से तीसरा वाला, पीछे से तीसरा वाला, उसमें भगवान के मुखमंडल का वर्णन होता है। उसके उपरांत परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी को कि श्री कृष्ण कौन थे, क्या थे, सब प्रश्न पूछते हैं, कैसे उन्होंने जन्म इधर लिया, वहां क्यों गए, गोकुल क्यों गए, वगैरह वगैरह प्रश्न पूछते हैं। उस तात्पर्य में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं क्यों परीक्षित महाराज ने श्री कृष्ण के बारे में इतने सारे प्रश्न पूछ करके श्रवण करने की इच्छा जताई। क्योंकि वो कृतज्ञ महसूस कर रहे थे खुद को कि पांडवों के साथ जो रहे भगवान श्री कृष्ण, वही भगवान ने संता नबीजम कुरु पांडवानाम। वो कहते हैं द्रौणस्त्र इदम मदंगम, मेरा अंग जो है वो द्रौणी अश्वत्थामा के अस्त्र से नष्ट हो गया था। कौन था वो? संतान बीजम कुरु पांडवानाम, कौरव और पांडवों में एक ही बीज बाकी था परीक्षित, बाकी सब मर गए थे। इसीलिए तो उनका ही राजा बनाया गया। दशम स्कंद पहले दो चार श्लोकों में मिलेगा उसका उत्तर, क्योंकि कोई जीवित था ही नहीं, अगर था भी तो वो योग्य नहीं था, नहीं तो परीक्षित महाराज ऐसा क्यों बोलेंगे कि एक ही संतान बीज बाकी था जो मैं था, और मेरे को भगवान श्री कृष्ण ने गर्भ में बचाया है, तो मुझे उनके बारे में कुछ बताइए। वैसे श्रीमद् भागवतम का दशम स्कंद प्रारंभ होता है हरे कृष्ण। ठीक है, यहां पर हम अभी समाप्त करते हैं आज की भागवत चर्चा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, उपस्थित भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंदे।